नमस्कार भारत, 30 अप्रैल रविवार, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के 100 दिन पूरे, राष्ट्रपति ने कहा पहले दिन से शुरू किया काम और लगातार करते रहे।
So I promise you in my inaugural address 100 days ago that now arrives the hour of action and we
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन तलाक पर खत्म हो राजनीति। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा
हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे कहें कि वो इलेक्शन के अंदर क्यों उनकी पार्टी के लोग बाकायदा इसको मुद्दा बनाए हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाईकोर्ट ने किया निलंबित। उत्तराखंड में दोपहर का भोजन पाने के लिए किसी तरह स्कूल में बने रहना चाहते हैं छात्र। न्यूज मेकर और अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में लाखों नौकरियां पैदा की हैं और स्टॉक मार्केट भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वायदे 100 दिन पहले किए थे वो उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो उन्होंने अमरीकियों से वादे किए थे। क्यूबा से मिल रही खबरों के अनुसार सेना का एक विमान द्वीप के पहाड़ों से भरे पश्चिमी इलाके में गिर गया है। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में सेना के 8 जवानों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार सोवियत रूस का बनाया ये विमान आर्टेमिसा इलाके के ऊपर से गुजरते वक्त रडार से गायब हो गया था। विमान ने हवाना के नज़दीक प्लाया बाराकोवा से उड़ान भरी थी। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने को मंजूर किए जाने के बाद यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लाउड यूंकर ने कहा है कि ब्रिटेन ब्रेक्सिट में होने वाली तकनीकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है। इधर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय काउंसिल से कई देशों ने अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा
Deshalb ist es ganz wichtig, dass die europäische Position der 27 jetzt auch sehr
यह महत्वपूर्ण है कि हमारे अपने एजेंडे में और जिस तरह हम आगे बातचीत करते हैं यूरोपीय संघ में 27 देशों की स्थिति स्पष्ट हो जाए। आज स्पेन और जिब्राल्टर, साइप्रस और उसकी समस्या के साथ साथ आयरलैंड ने अपनी खास समस्याओं के बारे में बात की और इसमें काफ़ी हद तक एकमत दिखाई दिया। ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप एर्दोआन ने कहा है कि इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाने वाले रक्का कब्रिस्तान में बदल सकता है। इस्तांबुल में उन्होंने कहा कि तुर्की इस्लामिक स्टेट से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा
DAEŞ terör örgütüyle bizden başka ciddi şekilde mücadele eden hiçbir ülke yoktur.
हमारे सिवा कोई और इतना प्रतिबद्ध होकर दाएश यानी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा है। हमसे कोई इस बारे में बेकार की बातें ना करे। अब तक हमारी सीमाओं से दूर जाराबलूस, अलराई, दाबीक और अलबाब में 3,000 से अधिक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप एर्दोआन के शब्द। तुर्की की सरकार ने करीब 4,000 से अधिक प्रशासनिक सेवा में लगे कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। बीते साल जुलाई में हुई तख्तापलट की कोशिश के बाद सरकार का ये सबसे बड़ा कदम है। ब्रितानी बॉक्सर एंटोनी जोशुआ ने यूक्रेन के 41 साल के व्लादिमीर क्लिचको को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया है। वेम्बले स्टेडियम में हुए इस दिलचस्प मुकाबले को 90,000 दर्शक देखने आए थे। 11वें राउंड में जोशुआ ने क्लिचको को अपरकट दिया और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के इस टाइटल को अपने नाम किया। 27 साल के जोशुआ ने अपने पहले 18 मैच नॉकआउट से जीते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोबारा चुनाव में खड़े होने का विरोध करने के लिए आयोजित रैलियों में हिस्सा लेने वाले दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। खबरों के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग में 30 लोगों को और केमेरोवो शहर के दक्षिण में 16 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देश की अन्य जगहों पर कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से भी रोके जाने की खबरें हैं। ओपन रशिया मूवमेंट ने इन रैलियों का आयोजन किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर रविवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत अमेरिका से करते हैं, जहां आज डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे 100 दिन पूरे हुए हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने पिल्सेनिया के हैरिसबर्ग में रैली को संबोधित किया और कहा,
So I promise you in my inaugural address 100 days ago that now arrives
तो 100 दिन पहले मैंने अपने पहले भाषण में जो वादा किया था कि कदम उठाने का वक्त आ गया है, वो पूरा हो गया। मेरा यकीन कीजिए, ये काम हमने पहले दिन से शुरू किया और हमने ये करके दिखा दिया, कार्रवाई के 100 दिन। दूसरी तरफ के लोग तो थक गए, उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। हम आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं और अमरीका की खूबसूरत महान नौकरियों को अपने देश में वापस ला रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द।
वंडरफुल ग्रेट अमेरिकन जॉब्स।
लेकिन इसी बीच हजारों की तादाद में लोग व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गए। ये लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि साफ वायु और वातावरण प्रदूषण का कारण बनने वाली गतिविधियों पर रोक लगे। तो ऐसे में क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? पूरा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
अमेरिका के वॉशिंगटन और कई अन्य शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग ट्रंप रास्ते से हटो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो उधर देश में जलवायु परिवर्तन को लेकर लोग रैलियां कर रहे हैं। बीते सप्ताह ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन के बारे में कहा था कि यह एक धोखा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक रैली में हिस्सा लेने वाले एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, यदि हमने कुछ नहीं किया तो कई चीजें दांव पर लगी है। हम अधिक वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पानी में आर्सेनिक जैसे तत्व जो उस हवा और पानी को प्रभावित कर सकते हैं जिसमें हमारे बच्चे सांस लेते हैं, जो पानी वो पीते हैं। बीते महीने डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा शासन के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उनका कहना था कि इससे कोयले को लेकर विरोध और नौकरियां खत्म करने वाली नीति खत्म होंगी। इस नए आदेश के तहत ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा योजना को रद्द कर दिया गया था और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। ट्रंप ने इस आदेश पर मुहर लगाते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया था। शिकागो में आयोजित रैली में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, वो वास्तव में इस देश के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और ज्यादातर लोग जिनमें विश्वास करते हैं उनकी नीतियां उसके उलट होती हैं, जैसे समानता, निष्पक्षता, न्याय, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, पर्यावरण अधिकार, पर्यावरण के लिए न्याय, ये सूची बहुत लंबी है। पर्यावरण सुरक्षा समूहों ने पहले भी ट्रंप की जलवायु नीति की निंदा की है। वे मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस पर वॉशिंगटन और दूसरी जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। तुर्की के राष्ट्रपति रिजब तैयब एर्दोवान आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तुर्की में हाल के दिनों में आए राजनीतिक बदलावों को देखते हुए एर्दोवान की यात्रा काफ़ी अहम रहेगी। वैसे भी तुर्की पाकिस्तान का करीबी रहा है, इसलिए एर्दोवान की इस यात्रा से कुछ उम्मीदें हैं। हरता कांडपाल ने हर्ष पंत से बात की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं आज के समय में, और पूछा उनसे कि आज के समय में भारत और तुर्की के रिश्तों में क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर इस यात्रा के दौरान बातचीत होगी।
देखिए, कई मायनों में तो ये खास यात्रा होगी उनकी, क्योंकि काफी समय बाद वो आ रहे हैं और कहीं पर तुर्की में भी बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफी सेंट्रलाइजेशन कर लिया है पावर का, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नेता के रूप में वो उभर कर आ रहे हैं मिडल ईस्ट में। तो भारत इस यात्रा को काफी सीरियसली ले रहा है क्योंकि काफी समय बाद हो रही है और तुर्की पाकिस्तान का काफी खास मित्र है।
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता को लेकर तुर्की से क्या उम्मीद होनी चाहिए?
देखिए एनएसजी और दोनों में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और एनएसजी में, दोनों में तुर्की ने एक पोजीशन ली है जिसमें कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनाव नहीं करना चाह रहा है। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो एनएसजी का मसला है उसमें भारत ये चाहेगा कि, क्योंकि उसकी दावेदारी भारत फिर पेश करेगा अगले महीने, तो वहां पर वो चाहेगा कि एक क्लियर स्टैंड तुर्की ले और भारत का जो पक्ष है उसको सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत कम देश ऐसे बचे हैं जो भारत का पक्ष अब नहीं समझ रहे हैं, भारत का साथ इस मुद्दे पर नहीं दे रहे हैं। तो भारत ऐसा करके शायद चीन, जो कि सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है, उसको अलग थलग किया जा सके।
पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियों को लेकर भारत को क्या बिल्कुल भी चिंतित होना चाहिए?
देखिए चिंतित तो भारत रहा है और भारत ने अपनी जो परेशानियां हैं उसको व्यक्त भी किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि तुर्की का इस्लामिक दोनों देश हैं और दोनों का कनेक्शन है, एक रिलीजियस कनेक्शन रहा है पास्ट में, उसको देखते हुए तुर्की ने काफी ऐसी पोजीशंस ली हैं जिससे भारत को थोड़ी परेशानी हुई है। उसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पर, और टेररिज्म का मुद्दा काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ये चाहेगा कि तुर्की कश्मीर में भारत का भी पक्ष समझे, और जो टेररिज्म आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है उसको देखते हुए अगर भारत तुर्की को पाकिस्तान से अलग कर पाया या कोई इस तरह का स्टेटमेंट भारत इस विजिट में ला पाया जिसमें कि तुर्की इस विषय को लेकर कुछ अपनी नाराजगी व्यक्त करे, तो ये भारत अपने लिए एक जीत समझेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष विपंत बता रहे थे कि रिचप तैयब अर्दवान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो जब भारत आएंगे तो किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, आज वो आने वाले हैं। और आइए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तीन तलाक पर राजनीति न करने की सलाह दी और कहा कि मुस्लिम समाज के लोग ही इसे सुलझाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के कई संगठन ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है, लेकिन सवाल ये भी है कि राजनीति कर कौन रहा है। हरिता कांडपाल की रिपोर्ट सुनिए।
इन दिनों देश में तीन तलाक के खिलाफ मुसलमान औरतों की मुहिम जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे का राजनीतिकरण न हो। उन्होंने कन्नड़ दार्शनिक बसवेश्वर की जयंती पर एक कार्यक्रम में कहा,
मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे।
लेकिन तीन तलाक पर राजनीति करने का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर ही लग रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं,
इसमें हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे कहें कि वो इलेक्शन के अंदर उसको बाकायदा, क्यों उनकी पार्टी के लोग बाकायदा इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कदर करते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा, लेकिन उन्हीं का लॉ मिनिस्टर जो है वो उस वक्त पूरे यूपी के इलेक्शन पे उन्होंने उसको एक कैंपेन के तौर पर कहा और उन्होंने कहा कि हम फौरन इसको इलेक्शन के बाद इसको हम डिसाइड कर देंगे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक के मुद्दे पर पहले ही किसी भी तरह के राजनीतिक या सरकारी दखल को खारिज कर चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अब्दुल बारी फिरंगी महली ने कहा कि तीन तलाक पर अब तक सिर्फ राजनीति हुई है।
यकीनी तौर पर इस पर बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है और एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011 मुसलमानों में सिर्फ तलाक के केसेस 0.5% होते हैं जबकि नॉन मुस्लिम्स में सेपरेशन के केसेस 3.7% हैं। लेकिन जो भी ट्रिपल तलाक के थोड़े बहुत केसेस मिस यूज के आ रहे हैं वो भी ना आए, उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में अपना कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक नूर सफिया नियाज का कहना है,
लेकिन अवेयरनेस और सामाजिक समझ तैयार करने का काम एक होता है और कानून की अपनी एक अहमियत होती है, तो हमारा पहले से ही एक डिमांड रहा है कि पूरे मुस्लिम पारिवारिक कानून को कोडिफाई करना जरूरी है कुरान में जो औरतों के हक है उसके आधार पर एक मुस्लिम फैमिली लॉ, एक मुस्लिम फैमिली कोड बिल बने।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीन तलाक के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं से इस मुद्दे पर मुलाकात भी की थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तीन तलाक पर इतनी बहस हो रही है उसके बाद क्या मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें कम होंगी या फिर ये एक और राजनीतिक या चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को सामूहिक बलात्कार के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद उस अदालत के जज को निलंबित कर दिया गया है जहां से गायत्री प्रजापति को जमानत मिली थी। समीर आत्मज मिश्र से सुनिए पूरा हाल।
गायत्री प्रजापति को चार दिन पहले ही लखनऊ के अतिरिक्त सेशन जज ओम प्रकाश मिश्र ने ये कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पीड़ित महिला ने शिकायत करने में 3 साल क्यों लगा दिए। गायत्री जमानत मिलने के बाद अभी जेल से छूटे भी नहीं थे कि राज्य सरकार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने न सिर्फ जमानत को रद्द कर दिया बल्कि जमानत देने वाले जज की मंशा और तरीके पर भी सवाल उठाए और जज को सस्पेंड कर दिया। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बीबीसी को बताया,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बेल ग्रांट किया था, तो जो बेल ग्रांट करने के मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं या जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसको नजरअंदाज करके बेल ग्रांट किया था। जैसे मैंडेटरी प्रोविजंस में ये है कि आप प्रोसिक्यूशन को या एग्रीव को सुनने का मौका देंगे पूरा सुनवाई का, तो इस केस में 24 तारीख को एप्लीकेशन मूव हुई और पहली डेट जो है सिर्फ एक दिन की डेट लगाई गई 25 की। 25 को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एडीजीसी, सरकारी वकील दोनों ये कहते हैं साहब बहुत शॉर्ट टाइम है, इतने टाइम में अभी रिप्लाई नहीं आ सकता। दोनों एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि जो बेल एप्लीकेशन गायत्री की थी उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली अपने पैरा 15 में लिखा था कि ही हैज नॉट नो क्रिमिनल हिस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट एडवोकेट या आईओ को मौका नहीं मिला इसलिए इस बात को वेरिफिकेशन नहीं हो पाया इस सबमिशन का, तो ये कंसील करके ये बेल ऑर्डर लिया गया।
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप भोसले ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जानकार जज ने अपराध की गंभीरता को अनदेखा करते हुए जमानत देने में जल्दबाजी दिखाई उससे उनकी मंशा पर संदेह है। जस्टिस भोसले ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जमानत देने वाले जज आज ही यानी 30 अप्रैल को रिटायर भी हो रहे हैं। दरअसल इस मामले में जांच अधिकारी ने जज से 3 दिन का समय मांगा था लेकिन सेशन जज ओम प्रकाश मिश्र ने 1 दिन के भीतर ही गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी। गायत्री प्रजापति अब तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर देता। विनोद शाही कहते हैं, गायत्री प्रजापति समाजवादी सरकार में पहले खनन मंत्री और बाद में परिवहन मंत्री थे। उन पर चित्रकूट जिले की एक महिला ने साल 2014 से लेकर 2016 तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। गायत्री और उनके 6 साथियों के खिलाफ महिला के साथ गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में FIR दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। जब तक चुनाव प्रक्रिया चलती रही गायत्री प्रजापति गिरफ्तारी से बचते रहे लेकिन सरकार बदलने के बाद ही 15 मार्च को उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और आइए अब अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं। मानसी दास आ चुकी हैं स्टूडियो। जी मानसी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रिपल तलाक वाले बयान को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने जो है पहले पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की जो हेडलाइन है वो है ट्रिपल तलाक के विरोध में लड़ाई का नेतृत्व जागरूक मुसलमान करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में जो हेडलाइन छपी है वो है कि मोदी ने कहा है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति ना करें। ये खबर हम अपने श्रोताओं को सुना चुके हैं तो इसलिए मैं इसके जो डिटेल्स हैं वो नहीं बता रही हूँ। अब अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में जो है एक दूसरी खबर मैं अपने श्रोताओं को बता दूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को हाल में जो नगर निगम चुनाव में हार हुई थी ये पार्टी की, उस संबंध में अपनी गलतियों को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि वो इस पर चिंतन करेंगे और पार्टी की सूरत बदलने की कोशिश करेंगे।
अभी तक वो ईवीएम को ही
इसका दोषी ठहरा रहे थे। जनसत्ता में एक खबर छपी है जिसके अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को हुई हुई हिंसा और आगजनी के संबंध में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक खबर आपको बता दूं, दैनिक जागरण के पन्ने से ये खबर हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि साल 2030 तक देश में पेट्रोल व डीजल की कारों की बिक्री नहीं होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक कारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस पर प्रदूषण पर रोक लग सकेगी। बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की समीक्षा के लिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में एक आदमी ने 5वीं पास करने वाली अपनी बेटी को फिर उसी कक्षा में दाखिला दिलवाने की प्रार्थना की, वो इसलिए ताकि बच्ची का स्कूल ना छूटे और उसे दोपहर का भोजन मिलता रहे। स्थानीय मीडिया में खबर छपने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री ने खुद मामले में दखल दिया। इस घटना ने राज्य में शिक्षा की स्थिति की हकीकत से पर्दा उठा दिया है। राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट सुनिए।
उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर बसे चंपावत जिले के शोभन सिंह की बेटी भावना ने इसी साल 5वीं की परीक्षा पास की थी। कायदे से तो उसे 6ठी कक्षा में जाना चाहिए था, लेकिन शोभन सिंह ने उसका एडमिशन फिर से 5वीं में करवाने की कोशिश की। शोभन सिंह कहते हैं कि उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया था।
सर, मैंने तो अपने परेशानी के हिसाब से मैंने कहा बाहर व्यवस्था नहीं हो पाती है और एक साल अगर लड़की इसमें रहेगी तो शायद क्या पता आगे को थोड़ी व्यवस्था कहीं हो जाएगी, तो ऐसे दीदी लोगों के पास, ऐसे रिश्तेदारों के पास, ऐसे फिर अगले साल पहुंचा दूंगा।
नेपाल की सीमा के पास खेत गाँव के शोभन सिंह अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं और राजमिस्त्री के भी छोटे मोटे काम कर लेते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती गोविंदी देवी 2 किलोमीटर दूर सरकारी विद्यालय में भोजन माता के रूप में काम करती हैं। इसे जैसे तैसे दो बेटों और एक बेटी वाले इस परिवार का खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं बनती कि वो अपने बच्चों को लगभग 25 किलोमीटर दूर टनकपुर या लगभग 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय चंपावत में पढ़ा सकें। स्थानीय पत्रकार कमलेश भट्ट बताते हैं लोगों के पास यही दो विकल्प हैं।
या तो इन्हें चंपावत मुख्यालय में पढ़ाएंगे 70 किलोमीटर दूर, या फिर 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी में टनकपुर में पढ़ाएंगे। अब ये पढ़ाने का क्या माध्यम बनेगा? माध्यम ये बनेगा कि यहाँ पे किराए का मकान लेना होगा इनको, इस मकान में ही बच्चे पढ़ेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थितियाँ ऐसी नहीं होती है कि वो बच्चों को बाहर एफर्ट कर सके कि उनके राशन पानी का रहना और किराए का ले के साथ रह सकें। तो वो उनने ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारा बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसमें दोबारा रिपीट कर दे, स्कूल ही जाएगा और खाना भी मिल जाएगा।
कमलेश खुद 25 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा कर इस गाँव में पहुँचे थे। वो बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के 3 ही रास्ते हैं, जिनमें से एक तो 12 से 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का है और बाकी 2 25 से 30 किलोमीटर पैदल जाने वाले रास्ते हैं। बहरहाल मीडिया में खबर आने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने खुद दखल दिया और इसके बाद भावना का एडमिशन टनकपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हो गया। इस स्कूल की प्रिंसिपल और वार्डन प्रेमा ठाकुर कहती हैं कि एक बार एडमिशन के बाद यहां बच्चियों को 12वीं तक पढ़ाई करने की चिंता की जरूरत नहीं रहती।
के बाद हम लोगों को यहाँ पे पूरी सुविधा रहती है बच्चों को, ना हम जाने देते हैं, हम उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे जाना भी पसंद नहीं करते जब यहाँ रहने लग जाते हैं।
भावना के अलावा शोभन सिंह के 2 बच्चे और हैं। बड़ा बेटा अपनी बुआ के पास खटीमा में 6ठी में पढ़ रहा है और शोभन सिंह की योजना भावना के लिए भी अगले साल तक कुछ ऐसा ही इंतजाम करने की थी। दूसरा बेटा अभी 2री कक्षा में है। ये मामला राज्य में शिक्षा की स्थिति की बानगी भरा है। न जाने कितनी भावनाएं स्कूलों की दूरी की वजह से शिक्षा से वंचित हो रही हैं। राजेश डोबरियाल, BBC देहरादून।
और अब इस हफ्ते का न्यूज मेकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से बात कर रही हैं राखी शर्मा।
नमस्कार, BBC न्यूज मेकर्स पर मैं राखी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज न्यूज मेकर्स पर हमारी मेहमान बड़ी खास हैं। 2008 में फिल्म फैशन के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा बॉलीवुड में तमाम अवार्ड बटोरने के बाद कुछ साल पहले इन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। वहां अमेरिकन टीवी सीरीज की सक्सेस के बाद अब ये नजर आने वाली हैं पहली हॉलीवुड फिल्म में। फिल्म का नाम है बेवॉच, जिसके प्रमोशन के लिए प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत में हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, आपको 2 साल हो चुके हैं हॉलीवुड में। क्वांटिको टीवी सीरीज के 2 सीजन आप खत्म कर चुकी हैं। ये आपकी पहली हॉलीवुड फिल्म है, तो अब वहां लोगों के बीच आपको लगता है आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं, और काम मिलने का जो तरीका है बॉलीवुड और हॉलीवुड में कितना डिफरेंट है?
वहाँ पे योर एजेंट्स, आपके एजेंट्स आपको भेजते हैं स्क्रिप्ट्स, जो इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप जाके ऑडिशन करते हो। बेवॉच के लिए मुझे करना नहीं पड़ा थैंकफुली, बिकॉज दे न्यू माई वर्क एंड दे रियली वॉन्टेड मी टू डू द विलन, और मुझे अच्छा भी लगता, बड़ा मुश्किल होता करना। सो इट इज दैट्स जस्ट इट्स जस्ट द वे इट हैपन्स। आई डोंट थिंक पेशेंस और परसिवियरेंस की अफकोर्स जरूरत होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, जिस तरह हम हिंदी फिल्मों में भी करते हैं जब नए एक्टर्स आते हैं। जब मैं नई थी मैंने भी बहुत परसिवियर किया, मैंने बहुत काम किया है, अब उस मुकाम पर पहुंची हूं जहां लोग मुझे मेरे काम की वजह से जानते हैं, तो इसलिए आसान हो जाता है। अमेरिका में भी वो थोड़ा सा हाल हुआ है बिकॉज मेरे शो की वजह से मुझे लोग जानते हैं, तो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। आई डोंट थिंक कि एक माइंडसेट वाली बात होती है। मैंने भी कभी ये सोच के नहीं किया था कि मुझे, जैसे मैंने आपको बोला मुझे झंडा गाड़ना, मैं हॉलीवुड जाना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे फर्स्ट लैंग्वेजेस हैं बचपन से। मुझे जहीं अभी भी अच्छा काम मिले मैं उस देश में जाऊंगी। अभी दो हुए हैं, बाकी भी हो जाएंगे। आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल।
कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां।
प्रियंका, बॉलीवुड में अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक्टर के कंधों पर डाल दी जाती है, जैसे शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन अगर सक्सेसफुल होती है तो सभी का क्रेडिट होता है। क्या हॉलीवुड में भी इसी तरह का चलन देखने को मिलता है?
द वर्ल्ड इन जनरल फॉर सेंचुरीज हैज टोल्ड वुमेन कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, करेक्ट, ऑल आवर लाइव्स। सो नाउ दैट इज व्हाई Even when people watch films, you know, the male stars are given that kind of reverence. And I always try and correct people where we should change our point of view. कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां एक लड़की, अगर एक 100 crore की पिक्चर एक लड़की की फिल्म में हो चुका है with Kangana's film, right? We hit the 100 crore mark. It's a big fight. पहले तो लड़कियों को फिल्मों को ओपनिंग नहीं लगती थी, फैशन को लगी मेरे साथ, मेरी कॉम की वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग्स फॉर फीमेल एक्टर्स। तो वो देखो, आप ये दौर देखो ना, कितना अच्छा वक्त आ गया है एक्ट्रेसेस के लिए, जहां हमारी फिल्में हो सकता है अभी जल्दी जल्दी जाकर इन अ फ्यू इयर्स हमारी फिल्में भी 200-300 बनाएंगी।
तो ये थी प्रियंका चोपड़ा और उनसे बात कर रही थी राखी शर्मा आज की न्यूज मेकर में। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। IPL 10 की रौनक के बीच कल से मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहां अपने पहले ही मुकाबले में भारत को ग्रेट ब्रिटेन से 2-2 से बराबरी पर रहने को मजबूर होना पड़ा। खेल के 19वें मिनट में भारत के आकाशदीप ने मैदानी गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी 25वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन के कार्सन टॉम ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपना दबदबा बनाते हुए खेल के 47वें मिनट में मनदीप सिंह के मैदानी गोल की मदद से 2-1 की बराबरी हासिल की। दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन ने जवाबी हमले करते हुए खेल के 52वें मिनट में फॉरसिथ एलन के मैदानी गोल की मदद से 2-2 की बराबरी हासिल कर ली और अंततः मैच समाप्त होने तक स्कोर भी यही रहा। उधर IPL 10 में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मुकाबले में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 61 रन से करारी मात दी। बेंगलोर के सामने जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो पूरे 20 ओवर खेलकर 9 विकेट पर केवल 96 रन बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने 55 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पुणे ने कप्तान स्टीव स्मिथ के 45 और मनोज तिवारी के नाबाद 44 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 157 रन बनाए थे। कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ, जहां मुंबई इंडियंस ने गुजरात लायंस को 5 रन से हरा दिया। जीत के लिए 12 रनों की तलाश में गुजरात 6 रन बना सकी। इससे पहले जीत के लिए 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पारी पूरे 20 ओवर में 153 रन पर समाप्त हुई, जबकि गुजरात लायंस ने भी 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। अंततः मैच टाई हुआ था।
और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि जो वायदे 100 दिन पहले उन्होंने अमेरिका की जनता से किए थे, वो उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। क्यूबा से आ रही खबरों के अनुसार सेना का एक विमान द्वीप के पहाड़ों से भरे पश्चिमी इलाके में गिर गया है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में सेना के 8 जवानों की मौत हो गई है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने को मंजूर किए जाने के बाद यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉन क्लाउड जूंकर ने कहा है कि ब्रिटेन ब्रेक्सिट में होने वाली तकनीकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है। तुर्की की सरकार ने करीब 4,000 से अधिक प्रशासनिक सेवा में लगे कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाला दीपक चसरोटिया ने। आपसे शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। अगर इस बीच खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।